हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेद शिवांशा के लिए साड़ी लेकर आया था, लेकिन उसे सूट में देखकर वेद ने फिलहाल उसे अपनी अलमारी में रख दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शिवांशा फिर से साड़ी पहने और पहले की तरह असहज महसूस करे। अगली सुबह जब शिवांशा वेद के कपड़े निकाल रही थी, तब उसकी नज़र उस साड़ी पर चली गई। जब उसे पता चला कि वेद को उसे साड़ी में देखना पसंद है, तो वेद के मना करने के बावजूद शिवांशा उसके बाथरूम में जाने के बाद वो साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी। वेद ने बाहर आकर उसकी मदद की। वेद की मदद से आज उसने पहली बार बिल्कुल परफेक्ट तरीके से साड़ी पहनी थी और वो काफ़ी सुंदर भी लग रही थी। तैयार होने के बाद शिवांशा वेद के साथ नीचे जा रही थी। उनका कमरा थर्ड फ्लोर पर था, लेकिन अचानक कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद शिवांशा को शरारत सूझी और उसने वेद की कमर पर हाथ रखकर उसे गुदगुदी करनी चाही। वेद वहीं पर रुक गया था और उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। हो गई तुम्हारी बच्चों जैसी हरकतें पूरी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मुझे टिकलिंग नहीं होती है, वेद ने सिर हिलाकर कहा। आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ये आपके बचने के तरीके हैं, शिवांशा ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी, जबकि चेहरे के भाव बिल्कुल सपाट थे। ठीक है, फिर ट्राई करके देख लो, वेद ने कंधे उचका कर कहा। क्या सच में? शिवांशा ने जल्दी से पूछा। वो बच्चों की तरह खुश हो गई थी जब वेद ने उसे खुद को छूने की इजाज़त दी। वेद ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। जब भी वो शान सी दिखने वाली शिवांशा को इस तरह बच्चों की तरह शरारत करते देखता, तो वो उसे और भी क्यूट लगती थी। वेद खोई हुई निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। अब तक शिवांशा को जिंदगी में वेद के अलावा और किसी के साथ इतनी खुशियां नहीं मिली थीं। उसके एक छोटे से प्यार भरे जेस्चर से वो काफ़ी खुश हो जाती थी। वेद हाथ बांधकर खड़ा था, जबकि शिवांशा कभी उसकी कमर पर तो कभी उसकी गर्दन पर गुदगुदी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेद पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद शिवांशा का मुंह बन गया था, तो वहीं वेद उसे देखकर हंसने लगा था। मैं एक बार फिर आपसे हार गई, शिवांशा ने बच्चों सा मुंह बनाकर कहा। लेकिन अभी पूरी तरह हार हुई नहीं है, वेद ने जवाब दिया, तो शिवांशा उलझन भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी थी। अचानक वेद शिवांशा के पास आया और उसे अपने करीब आते देख शिवांशा सीढ़ियों के पास बनी दीवार पर सट गई थी। उसे वेद के इरादे समझ नहीं आ रहे थे। अचानक वेद का हाथ उसकी कमर पर आया और उसने हल्के से अपनी उंगलियों को हिलाया, जिस पर शिवांशा जोर से हंस पड़ी थी। बहुत गलत बात है, अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, शिवांशा हंसते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसे इस तरह देखकर वेद मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को काबू में रख पा रहा था। वे दोनों खुद में ही खोल हुए थे और उन्हें ये तक एहसास नहीं था कि वे दोनों इस वक्त सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों पर खड़े हुए थे। इस बीच शिवांशा के हंसने की आवाज़ सुनकर वंश और आराध्या कमरे से बाहर आए। उनका रूम पास में ही था। जिस तरह से वेद खुलेआम शिवांशा को परेशान कर रहा था, उन दोनों के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। भाई कितना खुश है ना शिवांशा भाभी के साथ, और तुमने बेवजह कल रात उन पर डाउट किया। वैसे भाभी को कुछ ज़्यादा ही गुदगुदी नहीं हो रही, मुझे नहीं पता था कि भाई किसी की कमजोरी का फ़ायदा इस तरह उठाएंगे, आराध्या ने हंसते हुए धीमी आवाज़ में कहा, ताकि उनकी मौजूदगी का एहसास उन्हें ना हो। क्या कहा तुमने, भाभी को कुछ ज़्यादा ही गुदगुदी हो रही है, कोई यहाँ अपने बारे में भूल रहा है, वंश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। इससे पहले कि आराध्या उसे मना कर पाती या उससे बचकर वहाँ से जा पाती, वंश के हाथ उसकी कमर तक पहुँच चुके थे। आई टेल यू वंश, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आराध्या ने जोर से चिल्ला कर कहा, क्योंकि उसे हंसने से ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था, जबकि वंश जानबूझकर उसके चिल्लाने पर भी उसे छोड़ नहीं रहा था। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शिवांशा और वेद का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्हें देखकर उन दोनों को भी हंसी आने लगी थी। वेद और शिवांशा वैसे भी वंश और आराध्या से ज़्यादा दूर नहीं खड़े हुए थे। जब आराध्या की नज़र गई कि वे दोनों उन्हें ही देख रहे हैं, तो आराध्या ने वंश को इशारा किया और वंश बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया था। अगर तुम दोनों का रोमांस हो गया हो तो ब्रेकफास्ट के लिए चलें, वेद ने भौंहें उठाकर पूछा। हाँ भाई, बस हम दोनों जा ही रहे थे, आराध्या ने सकपकाते हुए जवाब दिया। हाँ बस हम जा ही रहे थे, लेकिन तभी सीढ़ियों पर हमें दो लव बर्ड्स दिखाई दे गए, तो हमारा भी मूड बदल गया, वंश ने बेपरवाही से जवाब दिया, जिस पर आराध्या उसकी तरफ खा जाने वाली निगाहों से घूर कर देख रही थी, तो वहीं शिवांशा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। शिवांशा तुरंत वेद के पीछे छुप गई थी और उसका यही मन कर रहा था कि काश वो कुछ देर के लिए इस दुनिया से गायब हो सके। उसका जवाब सुनकर वेद उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। आराध्या ने जल्दी से वंश का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दांत पीसते हुए दबी आवाज में कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अक्षत से भी ज्यादा चाइल्डिश बिहेव करते हो, क्या जरूरत थी भैया को इस तरह टीज करने की। हाँ तो भाई ने भी तो कितना खुलकर बोल दिया, पहले की बात अलग थी, लेकिन शादी के बाद बड़ा छोटा कुछ नहीं रहता, सभी आदमियों की हालत अपनी पत्नियों के सामने एक जैसी होती है, वंश ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वंश और आराध्या तो नीचे आ गए थे, लेकिन शिवांशा और वेद वहीं सीढ़ियों पर खड़े हुए थे। वेद ने शिवांशा को नीचे चलने का इशारा किया, लेकिन उसने नामे सिर हिला दिया था। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, न जाने मैं उनका सामना कैसे करूंगी, शिवांशा ने हिचकिचाते हुए कहा, उसके गाल अभी भी लाल हो रहे थे। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है और अब इन सब की आदत डाल लो,
मेरे साथ चलो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वेद ने शिवांशा के हाथ को कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ नीचे ले जाने लगा। वहीं अक्षत डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। उसने पहले वंश और आराध्या को, फिर वेद और शिवांशा को एक साथ नीचे आते देखा। आजकल कुछ लोग मुझे सिंगल होने का कुछ ज्यादा ही एहसास दिला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक सिंगल आदमी जिसकी एक आधी अधूरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, उसके सामने अपने अपने पार्टनर के साथ हाथ पकड़ कर आना एक तरह का पाप माना जाता है? अक्षत ने उन्हें छेड़ते हुए कहा। हाँ तो तुम्हें किसने रोका है? तुम भी जाकर शादी कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, सिर्फ बात रोमांस तक की ही नहीं होती है, कई बार झगड़ा होने पर मार भी खानी पड़ती है, वंश जवाब में बोला। लगता है भाई आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हो, अक्षत ने हंसकर जवाब दिया। फिर उसने वेद की तरफ देखा और उसे तंग करने के मकसद से बोला, वैसे भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सोचो जो वेद भैया सबको डांट रहे हैं वो भाभी के हाथों से मार। अक्षत के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे, क्योंकि जिस तरह से वेद उसकी तरफ देख रहा था उसके आगे बोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। कुछ पूछ रहे थे तुम? उसके रुकने पर वेद ने भौंय उठाकर पूछा। कुछ भी तो नहीं, अक्षत ने इतनी जल्दी से जवाब दिया और फिर शिवांशा की तरफ देखा और बिल्कुल धीमी आवाज में बड़बड़ाकर बोला, मुझे नहीं लगता कि इस बड़े हिटलर के सामने भाभी की चलती भी होगी। चौहान फैमिली में आज का माहौल काफी हल्का था। वेद इस बात का खास ख्याल रख रहा था कि गलती से भी शिवांशा रोहन की हियरिंग के बारे में ना सोचे, और कहीं ना कहीं वो इसमें कामयाब भी हो रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद रोहन के लिए परेशान था। शायद ही कोई उसकी आंखों में छुपी गहरी परेशानी को पढ़ सकता था। ब्रेकफास्ट के बाद जब सब ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तब वेद कुछ पल के लिए रुका और शिवांशा के पास आया।
उसने शिवांशा के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगी? हाँ बोलिए ना, शिवांशा ने जल्दी से पूछा, क्योंकि आज से पहले वेद ने कभी उसे इस तरह गंभीर होकर किसी काम के लिए नहीं कहा था। मेरे स्टडी रूम में जाना और वहां पर मेरी बुक्स काफी बिखरी हुई सी है, तो उन्हें सही कर देना प्लीज। मैं रानी को भी बोल सकता था, पर वो चीजें अक्सर खराब कर देती है। और अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम शाम को कल की तरह मेरे लिए खाना बना सकती हो? वेद में काफी धीमी और शांत लहजे में रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। हाँ क्यों नहीं, आप पूछ क्यों रहे हैं, बस बता दीजिए, मैं कर दूंगी, शिवांशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। थैंक्स, वेद बोला और फिर उसने हल्के से शिवांशा की माथे पर किस कर लिया था। उसे बाय बोलने के बाद वेद चौहान पैलेस से बाहर निकल आया था, तो वहीं शिवांशा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हालांकि वो इसका कारण अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि वेद उसे बिजी रखने के लिए इतने सारे काम बताकर गया है। शिवांशा तुरंत उसके बताए हुए कामों में लग गई थी। तो वहीं वेद जब चौहान पैलेस से बाहर निकला, उसके चेहरे के भाव सख्त थे। प्रतीक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, बाकी लोग जा चुके थे। जब प्रतीक ने वेद के चेहरे की तरफ देखा तो वो जल्दी से बोला, भाई आप परेशान लग रहे हो, आई होप कि सब ठीक हो। एक प्रतीक ही था जो वेद के चेहरे के बदलते हर भाव का मतलब समझता था। यही वजह थी कि आज तक उसने शिवांशा का सच जानने के बावजूद वेद के किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया था, ना पहले सबके सामने उसे अपनी पत्नी साबित करने पर, और ना ही अब शिवांशा के देवराज की पोती होने के बावजूद उनके रिश्ते को चांस देने पर। आई विश कि मैं ये कह पाता कि सब ठीक है प्रतीक, पर कुछ ठीक नहीं है। कल रोहन के केस की हियरिंग है, अभी कुछ देर में अरमान रोहन को लेकर यहाँ पहुँच जाएगा। उनकी सेफ्टी और रहने का इंतजाम देख लेना, और सब कुछ कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वेद ने धीमी आवाज में कहा, जिस पर प्रतीक ने हाँ में सिर हिला दिया था। वेद और प्रतीक साथ में ऑफिस चले गए थे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अरमान के रोहन के साथ निकलने के बाद नव्यांशी मनन के साथ घर पर अकेली थी। उसने मनन को टीवी देखने में व्यस्त कर दिया था और खुद अरमान के वर्कस्पेस को साफ करने के बहाने उस जगह पर आ गई थी। वो जानती थी कि अरमान अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट वहीं पर रखता है। अरमान ने मुझसे कहा कि वो रोहन को उदयपुर कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से लेकर जा रहा है और साथ में शिवांशा भाभी को भी उससे मिलवा लाएगा, जबकि उसने मनन के सामने किसी तरह के मेडिकल इशू का जिक्र नहीं किया। कह सकते हैं कि मनन ये सब नहीं समझता, लेकिन मनन को साथ ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरमान परेशान लग रहा था, कल रात भी वो रोहन को अकेले बात करने लेकर गया था। अगर सीधे सीधे पूछूंगी तो कुछ नहीं बताने वाला, रोहन के साथ कुछ तो अजीब है, वो खोया हुआ रहता है। सिर्फ उसका स्पेशली चैलेंज्ड होना ही उसकी परेशानी का कारण नहीं हो सकता है, बच्चा टैलेंटेड लग रहा है, शिवांशा भाभी भी डरी हुई रहती हैं। मैं समझ सकती हूँ, उनका ज्यादातर टाइम राजावत फैमिली के इर्द गिर्द बीता है, लीला राजावत बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं है, पर कुछ तो ऐसा है जो अरमान रोहन के बारे में छुपा रहा है। नव्यांशी फाइलों को इधर उधर करके देखते हुए खुद से बातें कर रही थी। उसने बहुत बार रोहन को अकेले में रोते देखा था, वीक में दो बार वो साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाता था। नव्यांशी को सब कुछ काफी अजीब लगा, तो उसने इसके बारे में पता लगाने का सोचा। अरमान ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पीछे से नव्यांशी इस तरह उसके वर्कस्पेस की छानबीन करने लगेगी, इसलिए उसने डॉक्यूमेंट्स को छुपाकर नहीं रखा था, और जल्द ही नव्यांशी के सामने कुछ पेपर्स आ गए थे। जैसे जैसे नव्यांशी उन्हें पढ़ रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, उसकी मुठ्ठियां कसकर बंद गई थी और उसकी आंखों से आंसू फिसल कर बाहर निकल आए थे। ऐसा लग रहा था कि वो ये दर्द खुद महसूस कर रही हो। नव्यांशी ने फाइल फेंकी और जोर से चिल्लाई, ओके तो नव्यांशी को सच का पता चल गया है,
आपने कमेंट में कहा था कि आपको वेद शिवांशा की लव स्टोरी और उनके मोमेंट्स देखना ज्यादा पसंद है, तो मैंने खास आपके लिए कुछ रोमांस सीन दिखाए जो आगे भी चलेंगे। चलिए बता दीजिएगा कैसा लगा और पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं और देखते हैं कितना नव्यांशी क्या करती है।